Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Vishwatmanandji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
इसलिए जो सुख दुख आवे इसी सुख दुख को ही फल बोलते हैं. जो सुख दुख आवे उसे बिना ननुनच किए हुए भोग लेना चाहिए, जिससे कि फिर दूसरा कर्म न बने. और जो करने की स्वतंत्रता है उसमें बड़ी इच्छा को सामने रख करके कर्म करना चाहिए. एक महात्मा थे तो वो कहते थे कि शेर भर सुनोगे तब तोले भर रहेगा और सुनोगे ही तोले भर तो रहेगा कितना ना रहे. तो इसलिए सुनने में कमी नहीं करनी चाहिए, खूब सुनना चाहिए, खूब सुनना चाहिए. लोग कह देते हैं जी बहुत सुन लिया हमने, फलाने का सुन लिया, अब किसका सुनना है. ये सब फालतू की बात है. सारी जिंदगी भी श्रवण के लिए नाकाफी होती है. सुनो, परमात्मा के बारे में सुनो 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 सुनो. और अपना अनुभव तो ये है नारायण कि सुनने से ही तत्व ज्ञान होता है. ये मनन निधिध्यासन जो है ये तो जब सुनने से ना होवे तब के लिए है, नहीं तो सुनते सुनते ही हो जाता है. अब दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं आठवें मंत्र में कि गुह्यम ब्रह्म सनातनम की जो प्रतिज्ञा की थी, मैं सनातन ब्रह्म को फिर तेरे से कहता हूं. नचिकेता ने कहा कि सुनाइए प्रभु. यएष सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद् वै तत्. यएष सुप्तेषु जागर्ति, अब ये आत्मा को लखा रहे हैं. आत्मा कहीं बाहर थोड़ी चला गया है. जो चीज आत्मा है विद्यमान, देखो ये दो शब्द हैं, एक है विद्यमान और एक है वर्तमान. विद्यमान माने जो होवे हो उसको बोलते हैं विद्यमान, और जो क्रियाशील हो उसको बोलते हैं वर्तमान, जो वर्त है. तो आत्मा तो है विद्यमान और बाकी जितना प्रपंच है वो है सब वर्तमान. वो चाहे अपना शरीर हो और चाहे शरीर से बाहर का संसार हो, सब वर्तमान है, बरत रहा है, बदल रहा है, चल रहा है. और ये आत्मा जो है ये है विद्यमान. वर्तमान का भी साक्षी है, वर्तमान का भी अधिष्ठान है. वर्तमान को देखता रहता है लेकिन स्वयं वर्तमान नहीं होता है. जागृत आई चली गई, स्वप्न आया चला गया, सुषुप्ति आई चली गई, और हम ज्यों के त्यों. तो हम तो हैं विद्यमान और ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये हैं वर्तमान. तो यह एष सुप्तेषु, यह जो एष माने आत्मा है, यही एष शब्द का प्रयोग वहां होता है जहां अत्यंत निकटता से किसी को बताना होता है. बोले यही जो आत्मा है, यही जो आत्मा है, यह सुप्तेषु जागृति, जब ये इंद्रियां सो जाती हैं और मन जागता रहता है तो स्वप्नावस्था हो जाती है, और जब इंद्रियां भी सो जाती हैं और मन भी सो जाता है तो सुषुप्ति अवस्था आ जाती है. लेकिन दोनों अवस्थाओं में ये जो विद्यमान आत्मा है ये जागता ही रहता है, अर्थात ये अपना साक्षित्व नहीं खोता है। मेरे साक्षित्व में ही जागृत होती है, मेरे साक्षित्व में ही स्वप्न होता है, मेरे साक्षित्व में ही सुषुप्ति होती है, मेरे साक्षित्व में ही समाधि होती है नारायण, और इन तीनों का अभाव भी होता है। भाव और अभाव सबका साक्षी मैं ही हूं, और ये मेरे में ही उत्पन्न होते हैं और मेरे में ही अंत में विलीन हो जाते हैं। यह एषु सुप्तेषु जागृति ऐसा अनुभव करो जो सबके सो जाने पर जागता रहता है। अच्छा, तो जागता रहता है तो सिर्फ जागता ही रहता है, कुछ और भी है? बोले कामम कामम पुरुषो निर्मिमाणः। जैसी जैसी कामना होती है, वासना होती है, बस वैसा ही वैसा ये पुरुष जो है निर्माण करता रहता है। निर्मिमाणः, तो जागृत में तो नहीं मालूम पड़ता है कि हम निर्माण कर रहे हैं, लेकिन स्वप्न में तो स्पष्ट मालूम पड़ता है कि जो कुछ भी निर्माण होता है हम ही करते हैं। अब जैसे स्वप्न में हम ही निर्माण करते हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जागृत में भी हम ही निर्माण करते हों। स्वप्न में निर्माण कैसे होता है? साक्षी रहता है और अहंकार रहता है और संस्कार वासना रहती है, तो वहां पर वस्तुओं का निर्माण हो जाता है। अब जागृत में देखो, साक्षी रहता है, अहंकार रहता है, वासना रहती है, और ये इतना बड़ा प्रपंच बन जाता है, लेकिन इसको हम ये नहीं मानते हैं कि ये हमारे द्वारा बनाया गया। एक क्रिया शक्ति ऐसी है परमात्मा की कि जो इसमें इच्छा शक्ति में काम करती रहती है, यही निर्माण कर देती है। अच्छा, सुषुप्ति में वो क्रिया शक्ति सो जाती है, मन सो जाता है, माने क्रिया शक्ति सो जाती है, इसलिए वहां कुछ निर्माण नहीं होता। साक्षी तो वहां भी रहता है, संस्कार भी रहते हैं, लेकिन निर्माण नहीं होता। अहंकार चूंकि सो जाता है, इसलिए अहंकार के सो जाने से वहां कुछ भी निर्माण नहीं होता। तो अहंकार के जगने पर ही निर्माण होता है, चाहे वो स्वप्न का हो चाहे वो जागृत का हो, और अहंकार के सो जाने पर कुछ नहीं रहता है, इसलिए आत्मा जो है ये है तो स्वतंत्र, लेकिन इसका निर्माण विभाग जो है ये दो के अधीन है, एक अहंकार के और एक इच्छा के। कामम कामम पुरुषो निर्मिमाणः, ये मांडुक्य उपनिषद में जो शंकराचार्य भगवान का प्रस्तावना श्लोक है, मंगलाचरण ही करना चाहिए, मंगलाचरण है, उसमें संपूर्ण वेदांत का रहस्य भर दिया है। श्लोक की व्याख्या तो ज्यादा नहीं करूंगा, मांडुक उपनिषद के बिल्कुल प्रारंभ जहां से होता है वहीं शंकराचार्य भगवान ने ये श्लोक लिखा है। प्रज्ञानांशु प्रतानैः स्थिर चरणकर व्याप्यभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगांस्तविष्टान् पुनरपि धिष्णोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्यो। और माया संख्या तुरीयम परमृतमजम ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। हम उस परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार करते हैं। कैसा है वो? कि उसके प्रज्ञान की किरणें जो हैं वो चारों तरफ फैली हुई हैं, जैसे सूर्य की किरणें चारों ओर फैली हुई हैं, ऐसे ही ये जो हमारा आत्मदेव है इसके ज्ञान की किरणें जो हैं पूरे शरीर में से निकलती रहती हैं। ये प्रकाश को आप देख नहीं सकते हो, ये तो साइंस में बात समझाई जाती है। प्रकाश को, प्रकाश के द्वारा तो वस्तुएं दिखलाई पड़ती हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखलाई नहीं पड़ता। ये तो जो धूलि के कण वातावरण में होते हैं, इन ये कण प्रकाशित होते हैं तब उनकी रेखा मालूम पड़ती है कि सूर्य की किरण आ रही है। ऐसे ही हमारे शरीर में से जो प्रकाश निकल रहा है ये दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन ये जब वस्तुओं को प्रकाशित करते हैं तब मालूम पड़ता है कि आखिर ये प्रकाश कहां से आ गया, कैसे जान लिया हमने कि ये माइक है, ये पुस्तक है। तो इसके जानने के लिए कहीं से तो प्रकाश निकला, वो प्रकाश आपके शरीर में से ही निकलता रहता है। और शरीर में से क्यों निकलता है? क्योंकि वहां प्रकाश स्वरूप आत्मा बैठा है, इसलिए निकलता है। जहां सूर्य होगा वहां उसकी किरणें तो होंगी ही होंगी। तो प्रज्ञानांशु प्रतान, इसको प्रज्ञान बोलते हैं। प्रज्ञान माने प्रज्ञा की, बुद्धि की, ज्ञान की किरणें। इनका एक वितान तना हुआ है, प्रज्ञानांशु प्रतान हो स्थिर चरण कर व्याप भिर व्याप्य लोकान। स्थिर और जंगम सब प्राणी, सब वस्तुओं को ये प्रकाशित करने वाला, सब लोकों को प्रकाशित करने वाला। तो पहले तो इनका जागृत अवस्था में भोग करता है, भोग करता है माने इनको जानता है, और फिर उनका संस्कार लेकर के भोक्त्वा भोगांस्थविष्ठान पुनरपधिष्णोद्भासितान कामजन्यान। फिर उनकी वासना से उन्हीं संस्कारों को स्वप्न में फिर मूर्त रूप कर लेता है। जो जागृत में देखता है उन्हीं को फिर स्वप्न में दोबारा देखने लगता है। क्या फर्क है दोनों में? कि स्वप्न तो व्यक्तिगत होता है और वासना मूलक है, और जागृत अवस्था के जो पदार्थ हैं वो व्यक्ति मूलक नहीं है लेकिन व्यक्ति के द्वारा प्रकाशित होते हैं। जैसे व्यक्ति के द्वारा प्रकाशित जागृत में वस्तुओं को देखता है उनकी वासना बन जाती है, उस फिर वासना मूलक जागृत अवस्था को ही स्वप्न बोलते हैं। जागृत अवस्था में हो ये स्थिति तो उसे मनोराज्य बोलते हैं, और निद्रा आने पर हो तो उसको स्वप्न बोलते हैं। स्थिति एक ही है। जैसे आप मान लो बैठ जाओ और सोचने लगो कि हम अमुक जगह पर हैं, अमुक जगह सत्संग हो रहा है, हम सुन रहे हैं, अमुक महात्मा प्रवचन कर रहे हैं, नारायण। अम्मा क्या है, आपका मन ही महात्मा बना हुआ है, आपका मन ही उसके शब्द बने हुए हैं, सुनने वाले भी आप ही हो। लेकिन ये सब क्यों हुआ? क्योंकि जागृत अवस्था में ऐसा हुआ है। ऐसा भी लोग मानते हैं कि स्वप्न में ऐसी भी चीजें दिख जाती हैं जो कभी जागृत अवस्था में नहीं देखें, लेकिन आज का मनोविज्ञान तो ऐसा मानता नहीं है। उसमें क्या है कि जैसे आपने स्वप्न में स्फुरण होता है, स्वप्न में एक दफे एक स्फुरण हुआ तो वो वस्तु दिख गई, फिर दूसरा स्फुरण हुआ फिर दूसरी वस्तु दिख गई। अब स्मृति ने दोनों चीजों को घालमेल कर दिया, तो घालमेल करने से क्या होगा कि एक तीसरी वस्तु तैयार हो गई। अब वो तो आपने देखी नहीं है जागृत में, जागृत में तो पहली देखी थी और दूसरी देखी थी, लेकिन ये घालमेल से बनी तीसरी, ओवरलैपिंग बोलते हैं आजकल इसको, तो मनोविज्ञान कहता है आज का कि ये ओवरलैपिंग के द्वारा ऐसा मालूम पड़ता है कि हम आकाश में उड़ रहे हैं। अब आपने हवाई जहाज उड़ता हुआ देखा है और आप भी बैठे हो उसमें और आपको भी ऐसा लगा कि हम भी उड़ रहे हैं। अब यही संस्कार आपके स्वप्नावस्था में आ जाता, कोई नई चीज थोड़ी आती है। तो वहां मन वासनात्मक सारा शरीर होता है, और जब सुषुप्ति आती है तो पीत्वा सर्वान विशेषान स्वपिति सब विशेषों को पी करके वो सो जाता है और मधुर भोंग और वो आनंद का अनुभव करता है। सुषुप्ति में आनंद कौन सा मिलता है आपको? जागृत का आनंद होता है क्या? जागृत में तो विषयों का आनंद होता है, स्वप्न में विषय भास का आनंद होता है और सुषुप्ति में निर्विषयता का आनंद होता है। विषय न होने का भी एक आनंद है, वही सुषुप्ति में आपको आता है। भगवान ने यह सुषुप्ति इसलिए बनाई है कि आपको जोंका त्यों परमात्मा मिल जाए। सुषुप्ति में आप असल में परमात्मा स्वरूप ही होते हो, लेकिन वो चूंकि पूर्व वासना दूसरे प्रकार की है। महाराष्ट्र तो ऐसे बोलते हैं कि अरे भाई कभी कभी ये भी सोचा करो कि ब्रह्मज्ञानी की भी तो एक सुषुप्ति होती है। मान लो किसी को ब्रह्मज्ञान हो गया, अब उसको सुषुप्ति होगी तो उसकी सुषुप्ति में क्या वो फिर जीव बन जाएगा? सुषुप्ति में वो तो जैसा जागृत में था वैसा ही रहेगा। तो अगर मैं जागृत अवस्था में अपने को ब्रह्म समझ गया तो स्वप्न चाह कुछ भी आवे, लेकिन सुषुप्ति में मैं ब्रह्म ही रहूंगा और जब मैं उठूंगा सुषुप्ति से तो ब्रह्म ही उठूंगा, फिर जीव नहीं बनूंगा कभी भी। नैनाम प्राप्ति भी मुह्यति। एक दफे ये बोध हो जाने के पश्चात फिर दोबारा विमोहित नहीं होता, मोह को प्राप्त नहीं होता। तो पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुर्भुङ् मायया भोजयन्यो माया संख्यातुरीयम्। अब ये जो परमात्मा है ये क्या है कि न ये जागृत है, न ये स्वप्न है, न ये सुषुप्ति है, ये तो चौथा ही है। तो बोले चौथा है तो फिर पांचवा भी मानना पड़ेगा। इसलिए योगी लोग जो हैं वो तुरीय को जो अवस्था मानते हैं, समाधि को तुरीय बोलते हैं वो लोग, योगी लोग। तो बोले फिर आत्मा क्या है कि आत्मा तुरीयातीत है। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया, ये हैं आत्मदेव की पुरिया। ये विचार सागर की पंक्ति है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया, ये हैं आत्मदेव की पुरिया, पुरी हैं ये। तो जो चौथी मानते हैं आत्मा की स्थिति, उपनिषद कहता है कि नहीं, ये चौथी संख्या वो नहीं है, एक दो तीन के बाद जो चार आता है ये नहीं है। ये तो वो संख्या है कि जो एक में भी रहती है, दो में भी रहती है, तीन में भी रहती है और तीनों के बिना भी रहती है, इसलिए उसको चतुर्थ बोलते हैं। तो ये माया की संख्या है। माया संख्या तुरियम परम अमृत मजम, वो परम अमृत है और अजन्मा है, ऐसा जो ब्रह्म है उसको हम नमस्कार करते हैं। तो नचकेता से कहते हैं कि हे नचकेता, ये सुषुप्ति में तो कुछ नहीं बनाता, जागता रहता है सिर्फ, और स्वप्नावस्था में वासना के अनुसार सारा संसार खड़ा कर लेता है। कामम कामम पुरुषो निर्मिमाणा। और जागृत अवस्था में बोले निर्माण तो वहां भी करता है, लेकिन वहां वो ईश्वर पर डाल देता है। अब विवेक पंचदशी इत्यादि में जहां विवेक कराया गया है तो वहां कहते हैं एक है ईश्वर सृष्टि और एक है जीव सृष्टि। तो ये जागृत अवस्था की जो सृष्टि है ये ईश्वर की सृष्टि है। वेदांत में ऐसा बोलते हैं कि जागृत अवस्था की जो सृष्टि है ये प्रमाण जन्य बोध है। अरे आपकी आंखें हैं इसलिए आपको रूप दिखलाई पड़ता रहेगा जब तक आंखें हैं। लोग ये कहते हैं ना जी हमें तो तत्व ज्ञान तो हो गया, संसार तो वैसा ही दिख रहा है, तो आंख फोड़ लो नहीं दिखेगा, कान फोड़ लो नहीं सुनाई पड़ेगा। जब तक ये इंद्रियां हैं तब तक ये सोपाधिक भ्रम है, तो ये तो बना ही रहेगा, इसलिए इसमें परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये इंद्रियां माने जिनसे ग्रहण हो रहा है प्रपंच, और ये प्रपंच ये अन्योन्या सापेक्ष हैं, अन्योन्य सापेक्ष हैं, एक दूसरे की अपेक्षा से। अच्छा आपकी आंख है कि हां है कि क्यों कि रूप दिख रहा है। अच्छा रूप है कि हां है कि क्यों कि आंख देख रही है। तो आंख से रूप सिद्ध होता है और रूप से आंख सिद्ध होती है। जो अन्योन्य सापेक्ष होते हैं वो उसको ही मिथ्या बोलते हैं। तो ये भी पारिभाषिक शब्द है, ये समझ लेना चाहिए। लोग कहते हैं संसार मिथ्या है, फिर भी संसार में सारा व्यवहार करना पड़ता है। अरे पड़ता क्या है, आप करना चाहते हो इसलिए आप करते हो। पड़ता बढ़ता कुछ नहीं है। जिस दिन आप सोच लो कि हमें नहीं करना, नहीं करना है। अरे फलाना क्या कहेगा, ढमका क्या कहेगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, तो करो फिर। फिर पढ़ने पढ़ने की जो है रोते क्यों होना है। इसको ब्रह्म जान लो, अपने को ब्रह्म जान लो, फिर ठाट से व्यवहार होने दो। करो नहीं, फिर ठाट से व्यवहार होने दो। आंख है तो रूप दिखेगा, कान है तो शब्द सुनाई पड़ेगा, हाथ है तो कुछ ना कुछ उठाओगे, पांव है तो कहीं ना कहीं चलोगे, मन बुद्धि है तो कुछ ना कुछ सोचोगे। तो कायदे से सोचो, कायदे से देखो, कायदे से सुनो, इसी के लिए ये धर्म होता है। तो वेदांत में हमारे यहां तो ऐसे ही बोलते हैं ना, व्यवहारे भट्ट नया। वेदांत का अपना कोई व्यवहार की वो नहीं है स्मृति, वेदांत स्मृति नाम जैसी कोई चीज नहीं है। जो पूर्व मीमांसा का सिद्धांत है, वेद का जो कर्मकांड का हिस्सा है, जैसा वो व्यवहार बताता है बस वैसा ही व्यवहार वेदांत को भी स्वीकार्य है, उसी को धर्म बोलते हैं। तो दोनों का कोई विरोध नहीं है, धर्म का और ब्रह्म का कोई विरोध नहीं है। लगता है कि विरोध है, ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे तो धर्म नहीं होगा, लेकिन कर्ता एब्सेंट हो जाता है, एब्सेंट माने मैं कर्ता नहीं हूं ऐसा बोध नहीं रहता, इसलिए कर्म में शिथिलता आ जाती है। अब आपकी मर्जी है, कर्म का फल जब नहीं चाहते हो तो मत करो, आपको पाप नहीं लगेगा। लेकिन अपने को कर्ता मान करके यदि आप धर्म का पालन नहीं करते हैं तो पाप लगेगा ना। तो येष सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण तदेव शुक्रम। बस ये इसी आत्मा को पकड़ लो, तदेव बस यही है वो आत्मा, पकड़ लो इसको। कौन? जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीनों के आने के जाने के, तीनों के अभाव के, तीनों के व्यवहार का जो साक्षी है, जिसमें ये तीनों का व्यवहार हो रहा है, वो ही तदेव शुक्रम, वो शुक्र है। शुक्र है माने शुद्ध है, सफेद है, शुक्र माने सफेद, शुक्लम, शुक्रम शुभ्रम शुद्धम। शुद्ध किसे कहते हैं? जिसमें कोई मिलावट ना हो, खालिस। अब कहते हैं ना, पहले बोलते थे कि देसी नहीं, असली घी में बना कि डालडा में बना है। जब से डालडा आ गया तब से असली और डालडा ये दो शब्द चल गए। और जब पहले डालडा नहीं था, माने वेजिटेबल नहीं था ये, तो असली घी कोई नहीं बोलता था, घी बोलते थे सब। तो अब एक असली हो गया, एक नकली हो गया। तो कहते हैं बस यही असली है आत्मा, शुद्ध है, बिल्कुल असली है। तदेव शुक्रम। तो बोले इसमें शुद्धपना क्या है कि इसमें कोई मल नहीं है। तीन प्रकार के मल होते हैं, कर्ममल, मायामल और आणवमल। ये सब पारिभाषिक शब्द हैं। कर्ममल का क्या मतलब? जब आत्मा का संबंध आप कर्म के साथ जोड़ लेते हो, मैं करता हूं और करता हूं तो मैं भोक्ता भी हूं, तो अपने को कर्ता भोक्ता मानना यही कर्ममल है। और मायामल क्या है कि भगवान ने हम भगवान के अधीन हैं, भगवान जैसा चाहेगा वैसा करेगा, तो ठीक है व्यवहार में तो आप ऐसा मान सकते हो, लेकिन परमार्थ में भगवान और मैं ये दो वस्तु नहीं है। अगर परमार्थ में भी आप भगवान और मैं दो वस्तु मानते हो तो ये मायामल है। और एक है आणवमल, आणव माने अणुमात्र, इसको लोक भाषा में ऐसा बोलते हैं कि सुराख में से ऊंट तो निकल गया है लेकिन उसकी पूंछ रह गई है। जिस सुराख में से ऊंट निकल सकता है उसमें से पूंछ कैसे रह जाएगी भाई? तो जो तत्वज्ञानी हो जाते हैं उनमें से बहुत से लोग ऐसे करते हैं, बोले हाँ वो तो ठीक है लेकिन प्रारब्ध तो सबको भोगना पड़ता ही है जी। तो ये जो प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है ये बात तो अज्ञानियों के लिए कही जा रही है जो अपने को कर्ता भोक्ता मानते हैं। अब तुम अपने को ब्रह्म भी मानते हो और अपना प्रारब्ध भी मानते हो नारायण, तो ये इसको आणव मल बोलते हैं, माने अणुमात्र शेष है अभी अविद्या। तो तीनों मल इसमें नहीं है इसलिए ये शुक्ल है, शुक्र है, शुद्ध है। तद ब्रह्मो, वही ब्रह्म है, यही महावाक्य हो गया नारायण। तत्वमसि, तत्वमसि में तत् पहले है, त्वम पीछे है, और यहां पे तदेव शुक्रम। तत् यहां पर ये तत् जो है ये त्वम पदार्थ है, आत्मा साक्षी, वो साक्षी ही तत् ब्रह्म है, वो ब्रह्म है। कौन सा? जो शुक्र है, शुद्ध है, जिसमें अविद्या माया कुछ नहीं है। तत् एव अमृतम, वही अमृत है, अर्थात कभी मरता नहीं है, आनंद ही आनंद है। उच्यते, इसी को अमृत कहा जाता है, भाष्यकार ने लिख दिया उच्यते सर्वशास्त्रेषु, सब शास्त्रों में इसी को अमृत कहा गया। इसी को माने आप ही को। तस्मिन लोकाश्रिता, चूंकि ये सबका कारण है इसलिए कोई भी लोक जो है इसके आश्रय के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। सर्वे तदु न अत्येति कश्चन, इसका कोई अतिक्रमण करके जिंदा नहीं रह सकता है। मैं से अलग भी हो जाए और वो चीज बनी भी रहे नारायण, ऐसा नहीं हो सकता। देखो अब ये पुस्तक है, मान लीजिए तो ये पुस्तक है, तो पुस्तक मेरे साथ जब एक हो जाती है तब पुस्तक का ज्ञान होता है। अगर ये पुस्तक आंख के द्वारा वृत्ति में ना आवे तो पुस्तक का ज्ञान नहीं हो सकता है। तो वृत्ति में जो चीज आएगी वो तो वृत्ति तो आत्मा से अभिन्न है, तो वो आत्माकार तो पहले हो ही जाएगी तभी तो उसका ज्ञान होगा ना। इसलिए कोई भी वस्तु जो है आत्मा का अतिक्रमण करके जिंदा नहीं रह सकती है। बोले स्वर्ग है, बोले भाई देख लें तब बताएंगे है कि नहीं, क्योंकि स्वर्ग है ये इसको परोक्ष बोलते हैं। बिना देखे ही मान लिया कि स्वर्ग है, बिना देखे ही मान लिया कि अमुक जगह अमुक चीज है। जब तक वो आपके साथ आत्मसात नहीं होती है तब तक उसका ज्ञान ही नहीं होता है, उसकी सत्ता ही प्रकाशित नहीं होती है। एतद वही तत्, यही है वो आत्मा जिसके बारे में मैंने प्रतिज्ञा की थी और तूने प्रश्न पूछा था कि वो आत्मा बताओ जो धर्म से परे है, अधर्म से परे है, कार्य से परे है, कारण से परे है। नारायण, तो यही है वो आत्मा। अब कील ठोक दी नारायण, अब ठोकी रहने दे बाद, फिर कल को फिर दूसरे ढंग से बताएंगे। हरिः ओम् पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 हरिः